एक क्लास चल रहा था, चार ग्यारह 1966 दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी, बच्चों को सर्विस फील्ड में जाते समय टैप रिकॉर्डर ले जाना चाहिए जो एक्यूरेट सुनाता है, और उसमें फिर समझाना चाहिए कि भगवान बाप आया हुआ है, वो तो निराकार है, आत्माओं का बाप है। और आत्मा तो निराकार होती ही है, निराकार आत्मा शरीर धारण किए बगैर कोई कार्य कैसे कर सकती है? तो मुख्य बात आती है कि वो निराकार सुप्रीम सोल कैसे किसी मुकरर रथ में प्रवेश करके अपने साकार सु निराकार स्वरूप का परिचय देते हैं, जिस साकार सु निराकार को शास्त्रों में अव्यक्त मूर्ति कहे है। मूर्ति माने साकार, अमूर्त माने जिसकी मूर्ति न हो, निराकार। लेकिन उन दोनों की प्रवृत्ति है, साकार मूर्ति और उसके साथ निराकारी स्टेज आत्मा व आत्मा की, जो संपन्न स्टेज कही जाती है, संपूर्णता की ही पूजा होती है, अपूर्ण पुरुषार्थी रूप की पूजा नहीं होती है। चित्र भी संपूर्ण के बनाए जाते हैं। तो जिस साकार में प्रवेश करता है वो पहले तो अधूरा पुरुषार्थी ही है, निराकार सुप्रीम सोल की याद के संग के रंग से आखिरी बाप समान बन जाता है। तब उसकी मंदिरों में पूजा होती है, जो मंदिर सारी दुनिया में सार्वभौम है। शिवलिंग के रूप में जाने जाते हैं, शिव बिंदी का नाम है, उसका नाम सदा शिव के रूप में जाना जाता है। सदा माने अविनाशी। ये विनाशी और अविनाशी का सवाल साकार दुनिया में पैदा होता है या निराकारी दुनिया में पैदा होता है, है? इसका मतलब है वो निराकार सुप्रीम सोल इस सृष्टि में जब किसी साकार मुकर्रर रथ में आता है तो उस आत्मा को आप समान निराकार बनाता है। या तो यूं कहें वो आत्मा अपने और बाप के स्वरूप को जान करके स्वयं अपने पुरुषार्थ से निराकारी स्टेज को धारण करती है। इसलिए सुप्रीम सोल बाप सुप्रीम टीचर कहते हैं। कि बच्चे मंदिरों में तुम्हारी पूजा होती है न, मैं पूजा करता हूँ और न पूजा लेता हूँ। चाहे 33 करोड़ देवताओं में से कोई आत्माएं हो या तो देव आत्माओं में महादेव हो, महादेव को भी दो रूपों में दिखाया जाता है। एक है पुरुषार्थी रूप जो प्राय है याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है, याद में रहने वाले को अपूर्ण कहेंगे या संपूर्ण कहेंगे, अपूर्ण है तो अपने से किसी ऊंचे की स्मृति में रहते हैं। संपूर्ण बनने के बाद याद करने की जरूरत नहीं है, वो सिर निराकारी स्टेज धारण कर ली, शिव समान बन गया। तो उसके शरीर को भी और उसकी आत्मा को भी नाम दिया जाता है शिवलिंग। शिव अर्थात कल्याणकारी। कोई भी हालत में कल्याणकारी। कोई भी व्यक्तित्व मात्र के लिए कल्याणकारी। कल्याण का सवाल ही पैदा नहीं होता। विश्व कल्याणकारी बाप निराकार शिव की आत्मा सिर्फ आकर के निराकार का निराकारी वर्षा देती है। ये पूछते हैं निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए? क्या हुआ निराकारी वर्षा? ज्ञान ही निराकारी है। वो सुप्रीम सोल बाप जो जन्मन के चक्र से न्यारा है वो है क्या चीज? अकूट ज्ञान का भंडार है। और इस सृष्टि पर आता है तो ज्ञान ही देता है। ज्ञान माने जानकारी। सच्चाई को ही जानकारी कहा जाता है। सत्य को ही भगवान कहा जाता है। कहते भी हैं गॉड इज द ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। सृष्टि की जो जानकारी देता है, सृष्टि के आज मध्यंत की जानकारी देता है, आत्माओं को अपनी अपनी जानकारी देता है, वो जानकारी उस निराकार आत्माओं के बाप निराकार शिव की वर्षे के रूप में गाई जाती है। जिस ज्ञान के वर्षे को नंबरवार पात्रधारी आत्माएं पात्र के अनुसार धारण करती है। कोई छोटा पात्र, कोई बड़ा पात्र, मनुष्य आत्माओं के बीच में 500-700 करोड़ पात्रधारी, सृष्टि में महामृत्यु के समय तक सभी मनुष्य आत्माएं नंबरवार सत्य को जानकर सत्य की जानकारी को धारण करती है। और धारण तभी कर पाती है जब वो निराकार सुप्रीम सोल शिव मनुष्य सृष्टि के बाप को पहचान लेती है। जो शिव का स्वरूप धारण कर लेता है, संपूर्ण ज्ञान को धारण कर लेता है, इसलिए उस साकार माध्यम और निराकार शिव दोनों की प्रवृत्ति को गाया जाता है। याद भी प्रवृत्ति की है, जिस याद में निराकार भी है और साकार भी है, दोनों की प्रवृत्ति समाई हुई है। इसलिए नाम पड़ता है शिवलिंग। क्योंकि बाप अपने पूरे परिवार का कल्याणकारी होता है। ये वेद का मनुष्य शक्ति का बाप भी है। जब अपने स्वरूप को संपूर्ण पहचान लेता है तो सारी मनुष्य शक्ति का कल्याणकारी। उस कल्याणकारी बाप को पहचानना, जानना, इस मनुष्य सृष्टि के हर मनुष्य के लिए अनिवार्य है। नहीं पहचानेगा तो महामृत्यु के समय निराकार आत्माओं के धाम में भी नहीं जा सकेगा। इसीलिए भगवान बाप ने मनुष्य सृष्टि के झाड़ के ऊपर जो साकारी चित्र बैठाया हुआ है शंकर के रूप में, वो ये साबित करता है इस मनुष्य सृष्टि की सभी आत्माएं महामृत्यु के समय उसे एक साकार सो निराकार की याद में अपने अपने शरीर को छोड़ती हुई आत्मलोक में वापस जाती है। उन सभी आत्माओं को खींचने वाला नंबरवार एक ही है जिसका नाम शास्त्रों में कृष्ण दे दिया है। कृष्ण का अर्थ ही है आकर्षित करने वाला। आत्मा बन करके आत्माओं को आकर्षित करता है। तो बताया उसे एक बाप का परिचय देना चाहिए। जब तक पूरा परिचय नहीं दिया है या पूरा परिचय नहीं मिला है तब तक केवल लास्टिंग निश्चय बुद्धि नहीं बन सकते। आज निश्चय बुद्धि बनेंगी, कल अनिश्चय बुद्धि बन जाते। उस साकार सो निराकार स्वरूप को गीता में अव्यक्त मूर्ति के रूप में जाना जाता है। वो लिंग मूर्ति है तो प्रेम सोल शिव का बड़ा आकार तो है लेकिन निराकारी स्टेज में टिका हुआ। तो निराकार भी है और साकार भी है। निराकार इसलिए कि उसे उस लिंग रूप की स्थिति में अपने इंद्रियों का बांध नहीं रहता है। आत्मा का बांध रहता है, आत्मिक स्टेज का बांध रहता है। अर्थात इंद्रियों से अनुभव करते हुए भी नहीं करता, देखते हुए भी नहीं देखता। कान है लेकिन कानों से सुनते हुए भी नहीं सुनता, जैसे कान है ही नहीं, आंखें हैं ही नहीं, इसलिए अव्यक्त मूर्ति कहा जाता है। ये बाप बताते हैं इस संगम युग में इस बाप के द्वारा अपना वर्षा ले लो, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। वो सुप्रीम सोल बाप कहते हैं मैं तो जीवन मुक्त नहीं बनता हूं, तुम बच्चे ही जीवन में रहते हुए दुख दर्दों से मुक्त बनते हो। डॉक्टर ही डॉक्टर बना सकता है, इंजीनियर ही इंजीनियर बना सकता है, तो जिसकी 100% जीवन मुक्ति हो उसके द्वारा ही जीवन मुक्ति पद पाया जा सकता है। मुक्ति जीवन मुक्ति की पढ़ाई जो स्वयं मुक्त और जीवन मुक्त नहीं बना है वो दूसरों को नहीं पढ़ा सकता। इसलिए बाप कहते हैं कि मेरे को याद करो, घर को याद करो और स्वर्ग को याद करो। कभी कहते एक को याद करो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो एक को याद करें या तीन तीन को याद करें। दो बातें हो जाती हैं ना, नहीं होती? अरे भगवान बाप ऐसे कैसे बोल सकता है? ये तो द्वैतवादी दुनिया के द्वापर कलयुगी मनुष्य दो बातें करेंगे। भगवान तो एक है, एक ही बात करता है। देवात्मा बच्चों को इशारा देता है, यही तुम्हारा बाप है। मनुष्य सृष्टि का बाप ही तुम्हारा वर्षा है और यही आत्माओं का घर है। आत्मा का बाप पिता, बच्चे कहाँ से निकलते हैं? कहते हैं बच्चे मां से पैदा होते हैं। लेकिन मां भी गर्भ कहां से धारण करती है? बच्चे का गर्भ धारण किया ना, तो आखिरी वो बच्चा कहां से आया? कहां से आया? माँ से आया या बाप से आया? बाप से आया। ऐसे ये मनुष्य शक्ति का बेहद का बाप है। जहां से इस सारी जड़ जंगम शक्ति का निर्माण होता है वो सदा ही सृष्टि पर कायम है और एक ही सदा कायम है, एक ही सत्य है। सत्य कोई दो चार नहीं होते और 100% सत्य है तो ही सत्य है। थोड़ा भी मिक्स है परसेंटेज में तो सत्य कहे या सत्य कहे। भरे हुए दूध के घड़े में एक बूंद सर्प का विष मिला दो तो सारा क्या हो जाएगा? विष ही हो जाएगा। तो जो सदाकाल सत्य है इस सृष्टि पर भी सदाकाल सत्य है। वो कोई आत्माओं के बाप शिव की बात नहीं है, वो इस सृष्टि पर सदाकाल काबिज ही नहीं रहता। वो तो 5000 वर्ष के लिए आत्मलोक का वासी हो जाता है। लेकिन ये जो सृष्टि है जहाँ सृजन का कार्य चलता ही रहता है, वो सृजन का कार्य एक से चलता है या दो चाहिए? एक से सृजन होगा क्या? तो मनुष्यों का कहना है सृजनकारी के लिए मूल रूप में दो हैं शक्तियां, एक चैतन्य शक्ति एक जड़तुमयी शक्ति। जड़तुमयी शक्ति को प्रकृति कहते हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश का संघात प्रकृति कही जाती है। वो प्रकृति माता का रूप है और प्रकृति का पति पिता का रूप है आत्मा पुरुष। तो ये सारी सृष्टि प्रकृति और पुरुष का खेल है, परंतु मनुष्य सृष्टि का बाप पुरुष तो है, परंतु परम पुरुष नहीं है। परम पुरुष कौन है? परम पुरुष वो है जो सबका बाप है। मनुष्य सृष्टि के बाप का भी बाप है, परंतु उसका बाप कोई नहीं। वो परम पुरुष और वो पराशक्ति जिसे प्रकृति कहा जाता है, दोनों का मेल होता है तब इस सृष्टि का सृजन का कार्य आरंभ होता है। उन दोनों में एक है पुरुष जिसे परम पुरुष कहा जाता है, सुप्रीम सोल सेवर, स्पिरिचुअल गॉडफादर। वो जब इस सृष्टि पर आता है तो पराशक्ति को चुनता है। कौन है वो पराशक्ति? पहली पहली माता कौन है? है परम ब्रह्म। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, और ब्रह्मा नामधारी तो बहुत है। तो उनमें जो अव्वल नंबर है वही अव्वल नंबर पांच तत्वों का पुतला है, जो पुतला पराशक्ति का रूप है। पंच तत्वों का संघात है मूल रूप में। परंतु उस पंच तत्वों से बने हुए शरीर को चलाने वाला पहले अज्ञानी आत्मा है या संपूर्ण ज्ञानी आत्मा है? पहले पहले क्या है? सुप्रीम सोल सेवन निराकार गॉड फादर के आने से पहले वो अज्ञानी है या संपूर्ण ज्ञानी है? उस शरीर को चलाने वाला रथी संपूर्ण अज्ञानी बन जाता है, बलि सृष्टि पर सदा कायम है तो भी जन्म मरण के चक्र में आने के कारण अज्ञानी बन जाता है। अज्ञानी का अर्थ ये पत्थर बुद्धि। इसीलिए उस लिंग को स्वर्ण लिंग, रजत लिंग, ताम्र लिंग और लौह लिंग, इन रूपों में गाया और पूजा जाता रहा है। वो बड़े से बड़ा मूल्यवान मेटल भी बनता है, हीरा भी बनता है, जिसे हीरे की पूजा द्वापर युग के आदिकाल में राजा विक्रमादित्य के द्वारा हुई थी। हीरा भी था और वो साकार शरीर का बड़ा रूप लिंग भी था। सुप्रीम सोल नौ रत्नों की तरह कभी पत्थर बनता है, नौ रत्न पत्थर होते हैं या नहीं होते हैं? शिव कभी पत्थर नहीं है, वो तो सदा जागती ज्योति है। वो जागती ज्योति प्रकृति के अब्बल लंबर पुतले में प्रवेश करती है, उस मुकरर रथ में प्रवेश करती है। तो अपना परिचय दे करके उसे आप समान भी बनाती है। आप समान बन गया, बच्चा बाप समान बन जाता है, बाप की तरह दुकान या कारखाने को संभालने योग्य बन जाता है, तो बाप बानवरस्थी हो जाता है। ये परंपरा सृष्टि में चलती रहती है। इसीलिए गीता में लिखा है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य है। जितने भी मनुष्य मात्र हैं मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। ये जो वानप्रस्थ होने की परंपरा चली है, ये परंपरा की शुरुआत किसने की? किसने की है? बाप ने की। किसे बाप ने की? शिव बाप निराकार ने की या मनुष्य सृष्टि के बाप ने पुरुषार्थ संपन्न होने पर ये परंपरा की शुरुआत की? किसने शुरुआत की? जब मनुष्य सृष्टि का बाप शिव समान बन जाता है तो शिव में और उस मनुष्य सृष्टि के बाप में कोई अंतर रहता है? अंतर है। सुप्रीम सोल बाप शिव आत्माओं का बाप और मनुष्यों के बाप में संपन्न होने के बाद भी अंतर है। क्या अंतर है? है एक आ करता है और दूसरा करता है। एक आजन्म है और दूसरा जन्म मरण के चक्र में आने वाला है। हाँ, संगम युग में जैसे सुप्रीम सोल बाप अखूट है, उसकी शक्ति कभी क्षीण होती ही नहीं। ऐसे ही जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो भी सब शक्तियों में अकूट बन जाता है संपन्न होने पर। कितना भी संग के रंग में आवे, कितनों के भी संग के रंग में आवे, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक आदि धर्म पिताओं की तरह क्षीण नहीं होता, संपूर्ण हो गया ना। जिसके लिए गायन है क्या पूर्णमिदम पूर्णमद पूर्णात् पूर्णम यदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसमें से पूरा ही निकाल लो तो भी पूरी शक्ति बचती। तो क्या अंतर हुआ? वो ऊंचे थे ऊंचे बाप, बापों का बाप, सभी आत्माओं का बाप कैसा है? कुछ अंतर है या नहीं है? मनुष्य सृष्टि का बाप जब संपूर्ण बनता है तो सुप्रीम सोल बाप से कुछ अंतर रखता है या नहीं रखता है? संगम में कोई अंतर नहीं और संगम के बाद शूटिंग पीरियड के बाद जब ब्रॉड ड्रामा शुरू होता है तो अंतर पड़ जाता है। क्योंकि एक है मनुष्य आत्मा, भले देवता बनकर श्रेष्ठ मनुष्य बन जाती है। और सुप्रीम सोल क्या है? न मैं देवता बनता हूँ, न मैं मनुष्य बनता हूँ, न मैं राक्षस बनता हूँ, मैं कोई गिनती में नहीं आता। जो गिनती में आए वो ड्रामा के चक्कर में भी आए। तो वो चक्र से न्यारा है, सुदर्शन चक्र घुमाने वाला है या नहीं है? है? जो इसे षष्ठी रूपी चक्र से न्यारा है वो सुदर्शन चक्र घुमाने वाला है या नहीं है? है? नहीं है। उसे अपने 84 जन्मों के चक्र को स्मरण में लाने की दरकार नहीं, वो तो है ही अशोचता। उसको सोच विचार करने की दरकार है ही नहीं। तो कौन हुआ सुदर्शन चक्रधारी? जो पूरे 84 जन्म लेने वाला है, इस सृष्टि पर सदा कायम है, वो ही सुदर्शन चक्रधारी परम पद विष्णु का पाने वाला है। और उसकी पहचान भी बताई। क्या पहचान बताई? कहाँ आराम से लेटा हुआ है? है? विषैले सर्पों की, सर्प सर्पिणी की शैया पर लेटा हुआ है। जिसके लिए गाते हैं, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। जैसे चंदन का पेड़ होता है, उस पर विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन अपनी सुगंध को नहीं त्यागता। ऐसे ही उसका गायन होता है पार्श्वनाथ के रूप में। पार्श्वनाथ स्पर्श का बिगड़ा हुआ रूप है। उसके स्पर्श से परिवर्तन होता है। वो किसी के स्पर्श से परिवर्तन को नहीं पाता। वो किसी के संग के रंग से प्रभावित नहीं होता है। उसके संग के रंग से सब प्राणी मात्र प्रभावित होते, और प्रभावित माने प्रजा। तो सुप्रीम सोल शिव के सभी मनुष्य आत्माएं प्रजा हैं। और फिर जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनमें बड़ा भाई कौन है? कोई बड़ा भाई है या नहीं है? कौन? प्रजापिता। तो बड़े भाई को बाप समान कहा जाता है। कारण या कारण अगर बाप नहीं है, नहीं रहता है, तो सारा परिवार किसके आधार पर चलता है? है? बड़े भाई के आधार पर चलता है। ये भी सृष्टि में परंपरा भगवान से चली है। भगवान ने ही आकर के ये परंपरा डाली है। जो द्वापर कलयुग की 2500 वर्ष की हिस्ट्री में ये परंपरा राजाओं में चलती ही रही कि राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को ही राजा ही दिए। छोटे बच्चों को राजा ही नहीं दी। क्यों नहीं दी है? कोई कारण होगा ना? जो बड़ा बच्चा होता है वो मात पिता के लंबे समय की प्योरिटी के पावर को धारण करता है। प्योरिटी की पावर ही सत्य है, सत्व है, सतीत्व है। यह सती नारियों की आज तक भी पूजा होती है। सतियों के आधार पर सारा कार्य चलता है। दुनिया के सारे कार्य किस आधार पर होते हैं? पवित्रता के आधार पर होते हैं। और वो पवित्रता की पावर को धारण करने वाली कौन है? धारण करने वाले को ही धरणी कहा जाता है। धरणी माने धारण करने वाली। क्या धारण करने वाली है? सत्व को धारण करने वाली। जैसे मनुष्य के शरीर में सत्व होता है वीर्य, उस वीर्य को धारण करने वाली धारण करती है तो सती कही जाती है। इसलिए भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो सत्य को धारण करने वाली, पवित्रता की शक्ति को धारण करने वाली धरणी रूपी कन्या माताओं को ही आगे करते हैं। जिन कन्याओं माताओं को द्वैतवादी युग में पीछे ढकेल दिया गया, भगवान बाप आकर के उन्हें लकब देते हैं कि तुम ही स्वर्ग का गेट खोलने वाली हो। स्वर्ग बनाना तुम्हारे आधार पर है। ये परंपरा अभी कहां से चली है? किसने शुरुआत की? अरे अरे, नहीं बताने वाली बात है। अरे शिव बाप आता है तो किसको चुनता है? है माता को चुनता है। कौन हुई पहली माता? है परम ब्रह्म। तो परम ब्रह्म ने उस सत्य की शक्ति को पहले पहले धारण किया। अव्वल नंबर इस सृष्टि पर है वो सत्य है जिस सत्य का कभी विनाश नहीं होता है। गीता में लिखा हुआ है ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य। सत्य का कभी अभाव होता ही नहीं। सत्य सदैव कायम रहता है। तो बाप कहते हैं टैप रिकॉर्डर एक्यूरेट ज्ञान सुनाएगा। लेकिन जो एक्यूरेसी है, अगर जिज्ञासु को समझ में नहीं आती है तो तुम क्या सेवा करो? पहली पहली सेवा क्या करो? बाप का परिचय दो। क्या तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां बाप का परिचय नहीं देती है? हैं? देती तो हैं, लेकिन अधूरा परिचय देती हैं, देशी गली परिचय देती हैं, या गहराई से संपूर्ण परिचय देती हैं? परिचय तो देती हैं। तुम आत्मा हो, तुम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है, तुम भी बिंदु हो, वो भी बिंदु है। अंतर यह है कि तुम जन्म मरण के चक्र में आने वाले हो, वो जन्म मरण के चक्र में आने वाला नहीं है। तो परिचय पूरा हो गया? क्यों परिचय पूरा क्यों नहीं हुआ? हाँ, इसलिए परिचय पूरा नहीं हुआ कि जो परिचय दिया है वो निवृत्ति का परिचय दिया है या प्रवृत्ति का परिचय दिया? एक आत्मा का परिचय दिया, परम पुरुष का परिचय दिया, वो लेकिन वो परम पुरुष जब तक पराशक्ति का आधार न ले तब तक इस शक्ति का, नई शक्ति का सृजन हो ही नहीं सकता। तो नई शक्ति का सृजन करने के लिए पराशक्ति का आधार लेता है, और वो पराशक्ति है ही परम ब्रह्म। ब्रह्म तभी कहा जाता है जब उसमें परम पुरुष विराजमान हो, परम पुरुष विराजमान नहीं है तो वो उस पुरुष का घर है, पुरुष कहाँ रहता है? घर में रहते हैं। तो वो घर भी है, उसमें बाप भी है, और वो सदा सत्य होने के कारण सुखदाई है या दुखदाई है? सदा सत्य है, सदा सुखदाई है। तो स्वर्ग हुआ या नहीं हुआ? बाप की गोद में बच्चा है तो कहाँ है? सुख में है या दुख में है? सुख में। हर एक बाप अपने बच्चे का कल्याण ही कल्याण चाहता है। तो बाप कहते हैं सिर्फ निराकार का परिचय देंगे तो इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियंस बन पड़ेंगे, और जो इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियंस बनेंगे वो दूसरों को भी क्या बनेंगे? इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन निराकार को मानने वाला बनाएंगे, और जो निराकार उपासी हैं, निवृत्ति के उपासी हैं, सिर्फ गॉड फादर को मानने वाले हैं, वो कभी भी पृथ्वी मार के देवताओं की दुनिया में नहीं जा सकते। इसलिए क्या करना है, पहले अपने प्रवृत्ति मार्ग वाले अव्वल नंबर बाप को पहचानना है और इस सृष्टि पर पहचानना है। इस सृष्टि पर उसका पूरा आईडी प्रूफ लेना है, नाम रूप गुण धाम कर्तव्य सारी जानकारी होना चाहिए। बाप का ज्ञान हुआ, बाप को पहचाना माना बाप के वर्षे को ले लिया। बाप का वर्षा है मुक्ति, जीवन मुक्ति। मुक्ति है सामान्य वर्षा और विशेष वर्षा क्या है, जीवन मुक्ति, जो सभी मनुष्य आत्मा को प्राप्त नहीं होती, अनेक जन्मों के लिए। सिर्फ हम बच्चे हैं जो अनेक जन्मों की जीवन मुक्ति प्राप्त करते हैं, जीवन में भी रहते हैं और दुख दर्दों से मुक्त भी रहते हैं। तो उस स्वरूप को पहचानना चाहिए जिसके द्वारा उस सत्य सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। स्थापना करने वाला धर्म पिता होगा तो धर्म का नाम पड़ेगा। बुद्ध धर्म है तो पिता भी है, क्रिश्चियन धर्म है तो पिता भी हुआ, माना धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है। हमारा धर्म क्या है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, सनातन है तो सत्य भी है। सनातन माने पुराने से पुराना, जिससे पुराना और कोई धर्म होता ही नहीं। धर्म भी पुराना है, सत्य धर्म है और धर्मखंड भी पुराना है। धर्म भी अविनाशी है और धर्मखंड भी अविनाशी है, तो धर्म पिता कैसा होगा है। धर्म पिता इस सृष्टि पर सदा कायम होगा या कभी होगा कभी नहीं होगा, सदा कायम होगा। और धर्म विनाशी है, धर्मकंड भी विनाशी है। यूरोप है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, ये पहले भी समुद्र के गर्त में 2500 वर्ष पहले समाये हुए थे ही नहीं, अभी फिर चतुर्थ विश्व युद्ध में एटमिक विस्फोट होंगे और ये फिर समुद्र के तल में समा जाएंगे। फिर कौन सा खंड अविनाशी बचेगा, भारत खंड ही अविनाशी बचेगा। तो धर्म का धर्म पिता जो सदा काल था, सदा काल है, सदा काल रहेगा, सिख लोग भी गाते हैं। हो सी भी सत्य है सी भी सत्य, तीनों कालों में सत्य है। वो सत्य को पहचानना है, पहले स्वयं पहचानना है, फिर दूसरों को परिचय देना। और परिचय देने का माध्यम क्या बताया? अपनी तिक तिक कम सुनानी है और सुप्रीम सोल बाप ने ब्रह्मा के द्वारा जो सुनाया है वो एक्यूरेट सुनाना है। इस माध्यम से है, टैप के माध्यम से। अभी टैप तो बंद हो गए, अब क्या करेंगे? अरे वीडियो है, वीसीडी है, डीवीडी है या नहीं है? छोटे रूप में भी है, हाथ में लेकर किसी और एक को समझा सकते हैं। तो बताया, यही बात इस वाणी में और पिछले कई दिनों से ये वाणी में बता रहे हैं कि बच्चे ढेर सारी तिक तिक ज्ञान की करते रहते हैं, लेकिन जिसका परिचय देना है वो परिचय नहीं दे पाते, जिसके ऊपर विश्वास बैठाना है वो विश्वास वो निश्चय नहीं बैठा पाते। इसलिए खुद भी हिलते रहते हैं और जिनकी सेवा करते हैं वो भी हिलते रहते हैं। तो बाप कहते हैं अभी ये बाप का बरसा, स्वर्ग का बरसा, बाप के घर का बरसा। जो कहते हैं बाप को याद करो, घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो, ये तीनों एक ही हैं और प्रैक्टिकल जीवन में है। ये वर्षा हम ले रहे हैं, मौत सामने खड़ा है, ऐसे क्यों कहा? राजा परीक्षित की कहानी आती है, उनको बताया गया 7 दिन के अंदर तुम्हारी मौत निश्चित है। तो क्या किया है? कुछ किया या नहीं किया? जैसे सामान्य जीवन में चलते थे वैसे ही चलते रहे या पुरुषार्थ में मोड़ लाया? तीव्र पुरुषार्थ कर दिया। तो बताया मौत सामने है, वो वेद का वर्षा लेना है तो अभी लेना है, नहीं तो मौत हो जाएगा। और मौत तो सारी दुनिया का होना है, कि किसी का होना है किसी का नहीं होना है, सारी दुनिया का मौत होना है। तो फिर चिंता किस बात की? जब मौत होना ही है सारी दुनिया का, तो फिर डर क्यों दिखाई रहे हैं? हैं? मौत तो होना है, लेकिन बाप तुमको जीते जी मरना सिखाते हैं। क्या ये जीवन रहे, ये शरीर रहे, शारीरिक मौत तुमको नहीं मरना है, देहभान की मौत से मरना है, देहभान को त्यागना है, आत्मिक स्टेज धारण करनी है। अगर ऐसी बेहद की मौत नहीं मरे और अभी से पुरुषार्थ नहीं किया तो पीछे कुछ भी नहीं मिलेगा,
कुछ भी नहीं मिलेगा।
द्वापर कलयुग में जो आत्माएं आकर जन्म लेती हैं, पहला पहला जन्म लेती हैं,
उनको कुछ भी नहीं मिलता,
नहीं मिलता है? अरे एक जन्म की जीवन मुक्ति मिलती है या नहीं मिलती है? तो ऐसे क्यों कहा कि कुछ भी नहीं मिलेगा? माना जो बाप का दिया हुआ डायरेक्ट वर्षा है, क्या जीवन मुक्ति बाप से जो सन्मुख पड़ते हैं वो सन्मुख पढ़ाई का वर्षा जीवन मुक्ति 21 जन्मों की नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगी। पीछे जब भी जन्म होगा तो तुम्हारा तुम्हारा जन्म रावण राज्य में होगा, राम राज्य में तो जन्म होगा ही नहीं। तो अब क्विक पुरुषार्थ चाहिए, ऐसा ना हो कि टू लेट हो जावे। क्या मतलब टू लेट का क्या मतलब? अरे टू लेट का बोर्ड तो 76 के लिए भी घोषित किया था, बोला था ना कि 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी, फिर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। तो बार बार टू लेट की बोर्ड की लगने की क्या दरकार? दरकार है, पहले पहले बताया टू लेट का मतलब, तुम सब ब्राह्मणों के जीवन का लक्ष्य है नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनना। वो लक्ष्य को प्राप्त करने वाला नर से नारायण बनने वाला बल नंबर, नारी से लक्ष्मी बनने वाला अब्दल नंबर पुरुषार्थी जोड़ा 76 में प्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले गया। तो एक जोड़े को छोड़ करके बाकी सब के लिए टू लेट का बोर्ड लग गया। अब क्या होगा? एक के बाद एक के बाद जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ माने जाते हैं वो कौन है? अष्टदेव, उनके लिए बताया। तुमको तमोप्रधान से सत्वप्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। की प्रत्यक्षता होगी, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा। जिन आठ को शिव की अष्टमूर्तियां कहा जाता है, उन अष्टमूर्तियों की पूजा और यादगार मंदिर कहाँ बने हुए हैं? दक्षिण भारत में। नॉर्थ इंडिया में क्यों नहीं है? कोई कारण होगा कि बिना कारण के कोई कार्य होता है? कारण है। वो आठों ही मूर्तियां चार मुख्य दिशाओं और उनके चार मुख्य कोण अर्थात आठ दिशाओं के पालने वाले आठ दिगपाल हैं, जो इस मनुष्य शक्ति में हरेक आस्तिक धर्म के पूर्वज हैं। पूर्वज माने पूर्व माने पहले पहले, जा माने जन्म लेने वाले। क्या आठों ही धर्मों में जिन आत्माओं ने पहले पहले जन्म लिया, उनसे पहले और कोई मनुष्य मात्र ने जन्म उस धर्म में लिया ही नहीं, वो आठों मूर्तियां जो भारत का विदेश माना जाता है, दक्षिण भारत, वहां उनके यादगार मंदिर बने हुए। तो किन्होंने पहले पहचाना होगा है? नॉर्थ इंडिया वालों ने पहले पहचाना होगा या साउथ इंडिया वालों ने पहले पहचाना होगा है? विदेशियों ने पहले पहचाना, भारतवासियों ने बाद में पहचाना। इसलिए जिन्होंने पहले पहचाना उन्होंने मूर्तियां बना दी, मंदिर बना दिए अष्ट देवताओं के। जिनकी अभी प्रत्यक्षता होने वाली है, जिनको भगवान से, भगवान बाप से पूरी प्राप्ति होती है, तो बाप कौन सा लक्ष्य देते हैं? पूरा लक्ष्य देते हैं या अधूरा लक्ष्य देते हैं? हैं? बाप तो कहते हैं मेरा हर बच्चा राजा बच्चा बने, लेना है तो पूरा ही ले बे, कम क्यों ले बे? तो बताया मौत सामने खड़ा है, कोई पुरुषार्थ चाहिए? ऐसा न हो कि वो संपूर्ण प्राप्ति में, प्राप्ति करने में टू लेट का बोर्ड लग जावे। बच्चों को कितना सहज समझाते हैं तो बच्चों को इस बात की फीलिंग होनी चाहिए कि जैसे बाप बताते हैं वैसे बच्चे नहीं समझाते। और दुनिया भर की बातों की टिक टिक करते रहते, क्या चाहते हैं बाप? सुप्रीम सोल बाप जो ज्ञान सूर्य है, वो हम बच्चों से क्या चाहते हैं समझाने के बारे में है? अरे नहीं समझा, कैसे बनेंगे राजा?
है जोर से। बाप ने तो बहुत कुछ समझाया, ब्रह्मा मुख से बहुत कुछ समझाया, लेकिन वो समझाने का जो मूल बिंदु है वो क्या है? हैं? हाँ, जो मुकर्रर पाठधारी है इस सच रूपी रंगमंच पर हीरो पाठधारी है, उस हीरो पाठधारी का पूरा परिचय देना। वो पूरा परिचय नहीं देते हैं और दुनिया भर की बातों की टिक टिक करते रहते हैं। बेसिक नॉलेज लेने वाले ब्राह्मणों की तो बात ही छोड़ दो, जिनकी हुजूम की हुजूम संख्या है दुनिया में, वो तो अपने ही नशे में देवान में धुत रहते हैं। कौओं की तरह कांव कांव करते ही रहते हैं। शास्त्र प्रसिद्ध यादवों की तरह भगवान बाप को भगवान के रूप में जानते ही नहीं है। यादव भगवान को जानते थे है? नहीं जानते। तुम बच्चों ने भगवान बाप को जाना है, तुम पांडव बच्चे हो तो बच्चों को ये फीलिंग आनी चाहिए। कि हम तो ऐसे नहीं समझाते, कैसे? जैसे बाप चाहते हमसे कि ऐसे समझो। ये फीलिंग आना चाहिए, अरे हम तो ऐसे करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, फलाना ये करते हैं फलाना वो करते हैं। ये बातें तो आती हैं, पता नहीं क्या करते हैं जो ये क्यों नहीं समझा सकते। ये समझानी उनकी बुद्धि में क्यों नहीं बैठती है कि हम पहले पहले बाप का परिचय देवे। कौन से चित्र की बात हो रही है? है त्रिमूर्ति की बात हो रही है। त्रिमूर्ति में कौन सी मूर्ति बाप है जिसका पहले पहले परिचय देना है? कौन सी मूर्ति है? हाँ जी, अव्यक्त मूर्ति, नीचे से ऊंचा करता, करनहार भी है और करावनहार मूर्ति भी है, व्यक्त मूर्ति भी है अव्यक्त मूर्ति भी है। जिसको गीता में अव्यक्त मूर्ति कहा गया है, शिवलिंग जिसकी यादगार दुनिया के खुदाइयों में सबसे ज्यादा प्राप्त हुई है, सार्वभौम मूर्ति है। समझा? ये ठीक बात है। तो त्रिमूर्ति के चित्र में समझाओ ये है तुम्हारा बाबा। क्या क्या है बाबा या बाप? क्या है? एक कहता है बाप, दूसरा कहता है बाबा। बाबा की तो परिभाषा बता दी, क्या बताई? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा बाबा को बाबा नहीं कहेंगे है? दादा बाबा नहीं कहेंगे? उस साकार में निराकार नहीं था है? था तो, लेकिन अभी तो है नहीं। तो जो वर्तमान प्राप्ति है उसको छोड़ दे, और जो पास्ट में हो चुका उसको भक्तों की तरह याद करते रहे, ये भक्ति मार्ग हुआ या ज्ञान मार्ग हुआ? ये तो भक्ति मार्ग हो गया। अच्छा, विष्णु की मूर्ति को बाबा नहीं कहते है? क्यों? क्योंकि वो तो संपूर्ण देवता है, वो देवता बनाने वाला नहीं है। देवता संपूर्ण बनने वाला है या बनाने वाला है? हैं? बनने वाला है। जिसे हम कहते हैं हमारा बाबा, वो बाबा तो संपूर्ण देवता बनने वाला भी है, और उस बाबा में बनाने वाला भी है। कौन है बनाने वाला? है शिव बाप अकेला? बाबा साकार और निराकार का मेल हो जिसमें, ये भी न कह सके, ये सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा है। इसका नाम सिर्फ शिव है, ये भी न कह सके। क्या कहें? शिव बाबा, बाबा शिव नहीं। क्यों है? बाबा शिव क्यों नहीं? जैसे शंकर शिव नहीं कहते, क्यों नहीं कहते? क्योंकि बड़े का नाम पहले और छोटे का नाम बाद में। तो मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, जो बिंदु रूपी स्टेज धारण कर जाए, बाप समान बन जाए, उसे कहेंगे शिव। और साथ में साकार शरीर भी हो, वो तो शंकर भी है। शंकर में सदाशिव तीसरा नेत्र भी दिखाते हैं। शंकर है तीन आत्माओं का, चंद्रमा भी है, सदाशिव भी है, और स्थूल नेत्रधारी भी है। तीन आत्माओं का शंकर है तो शंकर है, तो शंकर की मूर्ति को शिव बाबा कहें या न कहें? कहें। शंकर की मूर्ति जो याद में बैठी हुई है, पुरुषार्थ कर रही है याद का, उसको शिव बाबा कहें है? नहीं कहें? कहें? अरे शिव के मंदिर में बीच में शिवलिंग होता है और बाजू में और देवताओं के साथ मुख्य स्थान पर शंकर की मूर्ति रखते हैं। तो भगवान एक है या दो है? तो कौन है? शंकर की मूर्ति को भगवान कहें जो देवताओं के बीच में रखा है, देवताओं की लाइन में रखा है, या शिवलिंग को कहें? इससे साबित हुआ कि जो मूर्ति साकार तो है, बड़ा रूप तो है, लेकिन उस बड़े रूप को अपनी इंद्रियों का भान नहीं है, देखते हुए नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता, कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता, कर्म का कोई फल ही नहीं निकलता। कर्म इंद्रियों से जो कर्म किया जाता है उसका फल निकलता है या नहीं निकलता? काम इंद्रिय से जगत के संपूर्ण प्राणी कर्म करते हैं तो सृजन क्रिया करते हैं, फल निकलता है, बच्चा पैदा होता है या नहीं होता है? हैं? होता है। और वो अव्यक्त मूर्ति शिवलिंग ऐसा है कि कर्म तो करता है लेकिन संसार की तरह सांसारिक सृजन नहीं करता, वेद ब्राह्मणों की सृष्टि का सृजन करता है। जो ब्राह्मण ब्राह्मण से क्या बन जाते हैं? देवता बन जाते हैं। माना जिस सत्व से संसार सृजन करता है, वीर से सृजन करता है, वो स्थूल वीर है, वो लिंग मूर्ति नहीं करते। इंद्रियां प्रबल हैं, इंद्रियों से भी प्रबल मन है और मन से प्रबल बुद्धि है, और बुद्धि को भी परम बुद्धि बनाने वाला वो बुद्धिमानों की बुद्धि एक है। जो इस सृष्टि पर आकर के ऐसी बुद्धि का वाइब्रेशन तैयार करा देता है कि वाइब्रेशन से सृष्टि पैदा होती है, कोई भी प्राणी मात्र वाइब्रेशन से सृष्टि पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता। ये बेहद का वीर्य है जिससे सतयुग के राधा कृष्ण जैसे सप्तत प्रधानतम बच्चे का जन्म होता है, पहले पक्ति का जन्म होता है। और यहां संगम युग में नौकुरी के ब्राह्मणों में से
जो अव्वल नंबर पुरी है सूर्यवंशियों की, उस अव्वल नंबर पुरी के ब्राह्मणों का जन्म होता है। जैसा बाप बहन से बेटे, वो सभी बच्चे जो रुद्र के बच्चे हैं वो वेद का वीर्य तैयार करते हैं, इंद्रियों के द्वारा है, मन बुद्धि के द्वारा, ऐसा सत्व तैयार करते हैं जिससे नई दुनिया की नई राजधानी स्थापन होती है। उस राजधानी से श्रेष्ठ राजधानी दुनिया में न कभी हुई है और न कभी होगी। तो ये बातें बच्चों की बुद्धि में क्यों नहीं बैठती हैं? समझा? ये बात ठीक है, त्रिमूर्ति के चित्र में ये पक्का बुद्धि में बैठा देना चाहिए, ये है तुम्हारा बाबा। किस तरफ इशारा करेंगे? हैं? किस तरफ करेंगे? ब्रह्मा की मूर्ति की ओर, विष्णु की मूर्ति की ओर, शंकर की मूर्ति की तरफ? हैं? अरे यहां आके रुक गए? कौन सी मूर्ति की तरफ इशारा करेंगे? ये है तुम्हारा बाबा। अरे
अभी फिर बता दो।
है अव्यक्त मूर्ति, जो मूर्ति भी है और अव्यक्त स्टेज वाली भी है, जिसमें नाक आंख कान इंद्रियां कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां दिखाई ही नहीं देती। आंखों से जो दिखाई देता है वो है व्यक्त, और आंखों से जो दिखाई नहीं देता वो है अव्यक्त। तो जब उनकी बुद्धि में बैठे, समझने वाले जिज्ञासुओं की बुद्धि में कि हाँ ये है हमारा बाबा, तो उनसे कहो लिखो कि हमारा बाबा वेद का बाबा है, वेद ब्राह्मणों की सृष्टि रचता है, जो वेद के ब्राह्मण है ब्राह्मण सो क्या बनते हैं? देवता बन जाते हैं। इसलिए आज भी ब्राह्मणों की पूजा होती है, देवता समझ करके पूजन करते हैं। भाई वो ब्राह्मणों में पहला चोटी का ब्राह्मण वो प्रजापिता ब्रह्मा, ये बात भी ठीक है, क्योंकि प्रूफ के रूप में प्रजापिता ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप है ना, तो प्रजापिता ब्रह्मा है या नहीं है? है तो उसका प्रूफ क्या है? है उसका प्रूफ हम बच्चे बैठे हैं, हम क्या कहते हैं अपन को? है इस शक्ति में हमारा कोई बाप नहीं,
हम एक बाप को मानने वाले, हमारा एक ही बेहद का बाप है। एक ही हमारी माँ है, जिसके लिए शास्त्रों में हम गाते आए हैं, तम एव माता च पिता त्वम एव। संस्कृत में त्वम एक को कहा जाता है, एक पर्सनालिटी की ओर इशारा किया है। तू ही मेरी माता है। कौन कौन है? परम ब्रह्म माता भी है और उस परम ब्रह्म में परम पुरुष रूप में हमारा बाप भी है। तो प्रूफ के रूप में हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैठे हैं। ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हम यहां बैठे हैं ना, यहां हमने बाप से जन्म लिया तो हम यहां बैठे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा यहां ही होगा ना, है? शास्त्रों में लिखा है कि सारी सृष्टि किससे पैदा होती है, है? सारी सृष्टि ब्रह्मा की औलाद है। तो सारी मनुष्य सृष्टि में 500-700 करोड़ जो भी बच्चे हैं वो किसके बच्चे हैं? परम ब्रह्म के बच्चे हैं। उनको शिव का बच्चा कहें है? क्यों नहीं कहें? वो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है, आत्मा नहीं है? अरे है या नहीं? फिर तो उनका बाप 500-700 करोड़ आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, तो उनका बाप शिव क्यों नहीं है? आत्माओं का बाप 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं आत्मा नहीं है? है मनुष्य की आत्मा है, प्रजापिता भी मनुष्य है,
बाप समान एक
है,
बाप समान एक आत्मा है, बाप समान एक आत्मा बन जाती है।
वो तो जब बन जाएगी तब बन जाएगी, अभी मानने की बात है। मानना अभी है, जानना अभी है, जब बन जाएगी तब जानेंगे, है? अभी जानना है। तो सुप्रीम सोल शिव, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, वो हमारा ही बाप है, स्पेशल। हम बच्चे ही उससे स्पेशल वर्षा लेते हैं क्या? और दूसरी मनुष्य आत्माएं 500-700 करोड़ स्पेशल वर्षा नहीं लेती है क्या? लेती है या नहीं? नहीं लेती है। और हम स्पेशल वर्षा लेते हैं। क्यों? ये भी पास लेती है, हैं? बाप को पहचानते नहीं। अगर पहचानेंगे ही नहीं तो बाप के घर में कैसे जाएंगे? महामृत्यु के समय सभी मनुष्य आत्माएं अपना शरीर छोड़ करके बाप के घर में जाएंगी या नहीं जाएंगी? पहचान के जाएंगी या बिना पहचाने जाएंगी? हैं? कैसे भी सही, मना जो बाप के बच्चे कहे हैं, तुम बच्चे सन्मुख बैठने वाले, उनमें से मार कोई नहीं खाएगा। अच्छा फिर क्या बात हुई? वो भी मार खाएंगे, ये भी मार खाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? हमारा बाप सामने बैठा है,
मार खाएंगे तो बोलेंगे हाँ बाबा मेरा बाप।
वो मार खाएंगे? हम मार नहीं खाएंगे,
लेकिन हमारा कर्म से मार खाएंगे।
अरे वो बिना किए हुए कर्म की मार खा जाएंगे।
बाप को पहचानने के बाद भी हम कर्म करते हैं कि
मार? अरे वो बाप को पहचाने बगैर बाप के घर में जाएंगे?
ऐसे नहीं जाएंगे, लेकिन मार खाने के बाद तो जाना है।
बोलो बोलो बोलो, जम के बोलो।
है
नहीं, वो हमारा ही स्पेशल बाप इसलिए है कि हम ही उस बाप के ज्योति बिंदु स्वरूप में टिक जाते हैं और देवान को छोड़ देते हैं। देवान को भूल करके आत्मिक स्थिति में ऐसे टिकते हैं, कैसे? जो 9 लाख सितारे गाए जाते हैं, जिनमें से 4.5 लाख दिन के सितारे ऐसे हैं, सूर्यवंशी स्पेशल, जो अपने संकल्पों को, एक एक संकल्प को बाप के संकल्पों में तिरोहित कर देते हैं। मन मना भव, मेरे मन के संकल्प में समा जा, ऐसा प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले हम हैं। मैं बिंदु, मेरा बाप भी ज्योति बिंदु, और आत्माएं इस संकल्प में, बिंदु के संकल्प में, बीज रूप स्टेज के संकल्प में टिक ही नहीं सकेंगे। हम टिक जाएंगे, इसलिए इस सृष्टि में शरीर से रहते हुए भी हमारे शरीर का विनाश नहीं होगा और सबके शरीरों का विनाश हो जाएगा। हमारा शरीर भी शरीर रूपी नैया को, शरीर रूपी जहाज को, शरीर रूपी चाप को सतो प्रधान बन जाएगा। बाप ने हमको बताया है तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया का खिवैया, पार ले जाने वाला खिवैया एक ही बाप है। काई काई को पार ले जाएगा, आत्मा को भी और शरीर रूपी नैया को भी पार ले जाएगा। खिवैया नवैया को डुबो दे तो बिठैया का क्या हाल होगा? है वो भी डूब जाएगा। लेकिन हमारा खिवैया ऐसा बेहद का खिवैया है जो इस विषय वैतरणी नदी से, विषय सागर से पार लगा करके नैया की भी गारंटी देता है और नैया में बिठैया भी बैठी हुई आत्मा की भी गारंटी देता है। खास हम रुद्रमाला के मणकों की गारंटी देता है। क्या? जो चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा की रोशनी में पलने वाले हैं, जो अपने प्रकाश को ज्ञान चंद्रमा में मर्ज नहीं करते हैं, अपना अस्तित्व तो अलग दिखाते हैं। क्या? अपना अस्तित्व अलग दिखाते हैं, वो स्टेज को नहीं प्राप्त कर सकते।
कि दुनिया में जो परंपरा चल रही है, बाप का नाम, फिर फर्म का नाम लिखते हैं एंड सन्स कंपनी, बच्चे बाद में और बाप बाप पहले, ये परंपरा सूर्यवंशियों की चलाई हुई है, चंद्रवंशियों, इस्लाम वंशियों, बौद्ध वंशियों की चलाई हुई परंपरा नहीं है। तो सुप्रीम सोल बाप के प्रैक्टिकल स्वरूप को उतना महत्व ही नहीं देती, इसलिए बोला वो पहला इस सृष्टि में सब प्रकार की परंपराओं को आदि करने वाला बाप यहां होगा इस सृष्टि में। कोई सूक्ष्म वतन में थोड़े ही परंपराओं को आरंभ करेगा, ये हम बता देते हैं कि ब्रह्मा आदि जो है ये हम बता देते हैं कि ब्रह्मा अभी जो है कभी मुरली कब की है 66 के लिए बताया। ब्रह्मा अभी जो है अभी हम सभी पतित हैं, क्या अभी हम सभी पतित हैं, माना 66 में जो ब्रह्मा नामधारी घोषित हुआ था, सब ब्राह्मणों की पहचान में आया था, वो ब्रह्मा और उसके फॉलोअर्स, और कौन, परम ब्रह्म भी, ये सभी क्या हैं, पतित हैं, पावन बनेंगे, अभी पतित हैं, फिर जब पावन बनेंगे तो सभी पावन हो जाएंगे, क्या एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं, एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं। तो बताओ वो एक कौन है,
ब्रह्मा बाबा,
वो एक कौन है जो द्वापर युग के आदि से पहले आत्मा पतित बनना शुरू होती है, बताओ है? हाँ जी, एक ही पहले पतित बने की शुरुआत करता है और एक ही पावन बनने की भी शुरुआत करता है, वो सबका बाप है, पतितों का भी बाप है और पावन बनने वालों का भी बीज है, बीज पहले या झाड़ के अन्न आवे अब पहले, बीज पहले, जब हम पावन बनेंगे तो सभी ऐसे पावन हो जाएंगे, ऐसे कहकर किस तरफ इशारा किया, सभी ऐसे पावन हो जाएंगे, ऐसे माने अरे बाबा इशारा करते थे, ऐसे कहकर किसकी तरफ इशारा किया होगा, नारायण की तरफ इशारा किया, पवित्र हो जाएंगे, जब पवित्र हो जाएंगे तो सूक्ष्म वतनवासी बन जाएंगे, कब बोला है
छाछठ में बोला, छाछठ में बोला, पहले पहले बोला जाता है, पहले मन में संकल्प आता है, फिर बोला जाता है, फिर प्रैक्टिकल कर्म इंद्रियों से किया जाता है। तो जितनी भी इंद्रियां हैं उनमें सबसे प्रबल इंद्रिय कौन सी है? मन। तो बोला पहले हम सूक्ष्म वतनवासी हो जावे। कौन है जो भी ब्रह्मा सो विष्णु बनने वाले होंगे? नंबर बात, फिर ब्रह्मा भी सूक्ष्म वतनवासी तो विष्णु भी सूक्ष्म वतनवासी, तो सबसे ऊंची पुरी में कौन वासी? शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी, तो पहले पहले सूक्ष्म वतनवासी कौन बनता होगा? अरे कौन बनता होगा है? जो सबका बाप है, सभी मनुष्य सृष्टि का बाप है। आदि सारी मनुष्य सृष्टि का आदि, वो पहले सूक्ष्म वतनवासी बनता होगा। तो कब से बना? ये वाणी तो वाचा में आई छाछठ में, वो आत्मा जो काम के आधार पर शंकर नाम रूप धारण करती है, वो सूक्ष्म वतनवासी कब से बनती है? है राम बाप, मुरली में बोला बाप साकारी से आकारी बना, आकारी से निराकारी बना। निराकारी मूल रूप है, तो कब बना निराकारी? कब बना? अरे अभी पिछली अव्यक्तवाणी आई है, उसमें बोला है 18 जनवरी स्मृति दिवस नहीं है, पहला पहला स्मृति दिवस 5 दिसंबर है। है अव्यक्त वाणी में बोला, तो किस तरफ इशारा हुआ होगा? है सूक्ष्म वतन से ही अव्यक्त मिलन होता है, सूक्ष्म शरीर से ही होता है, या असली मिलन बीज रूप स्टेज का है, बिंदु रूप स्टेज का है? प्रैक्टिकल में आत्मा जब बिंदु रूप धारण कर ले, उस स्टेज में टिकने लगे, तो शिव बाप से मिल सकती है। जैसे बहुत से ब्राह्मण बच्चे अभी भी कहते हैं बिंदी को कैसे याद करें, इसका मतलब उनको ज्योति बिंदु याद ही नहीं आता। जैसे माँ को बच्चे का रूप याद आता है, आता है ना, ऐसे मनुष्य आत्माओं को जब तक आत्माओं के बाप का असली रूप ही याद नहीं आता,
तो आत्मिक की स्मृति में टिका हुआ कहा जाए है? तो कौन सी आत्मा है जो पहले पहले आत्मिक की रूप में टिकती है? राम वाली आत्मा टिकती है। जब आत्मिक रूप में टिकती है तो बाप से भी मिल सकती है। आत्मा के रूप में टिकने के लिए पहले ज्ञान मिलेगा या पहले टिकेगी? पहले ज्ञान मिलता है तो बता दिया है। ब्रह्मा मुख की वेदवाणी कहो मुरली कहो उसमें बता दिया है। तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। कब है? जब आत्मा की देह अभिमान की सारी कट उतर जाएगी, बिंदु बन जाएंगे, तो तुम डायरेक्ट किससे सीखोगे? बाप से सीखोगे। कौन सा बाप? कौन सी आत्मा? सिखाने वाला कौन सी आत्मा बाप के रूप में? अरे राम, हर बात में राम को ही पकड़ लिया। अरे राम बाप को सिखाने वाला कोई है या वो अपने आप सीख गया है? हाँ, शिव बाप पहले पहले राम वाली आत्मा के स्वरूप में जो बिंदु रूपी स्टेज में टिक जाती है या टिकना सीख जाती है उससे मिलन मेला मनाती है। तो दोनों आत्माओं का अव्यक्त मिलन, पहला पहला अव्यक्त मिलन साबित होता है या नहीं साबित होता है? वो अव्यक्त मिलन बताया 5 दिसंबर है। क्या 18 जनवरी नहीं? जब दादा लेकर आज ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा तो वो जाकर के सीधा परमधाम वासी बाप से मिल गया। दादा लेकर आज ब्रह्मा उनके लिए कहें कि उन्होंने देवान को पूरा छोड़ दिया है? हम बच्चों के लिए बोला है। तुम बच्चों का अर्थात योगियों का कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता। और ब्रह्मा का, दादा लेखराज का हार्ट फेल हो गया। कारण देवान को छोड़ पाया या नहीं छोड़ पाया? नहीं छोड़ पाया, इसलिए हार्ट फेल हो गया। जो बच्चे बिंदु रूप की स्टेज में टिक जाते हैं उनका देह अभिमान का कट उतर जाता है। इसलिए बोला तुम्हारी जब आत्मा की पूरी कट उतर जाएगी। कौन सी कट? देहभान की पूरी कट उतर जाएगी। देह माने मिट्टी, कट होती है, जंक लगती है ना, मिट्टी ही तो कहते हैं। वो कट जब पूरी उतर जाएगी तो तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे। तो डायरेक्ट बाप से सीखने वालों में अव्वल नंबर किसका हुआ? कौन होगा है? वही बाप जिसको परम ब्रह्मा बोला है, जो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है,
वो आत्मा ब्रह्मा के द्वारा जो दिया हुआ बेसिक ज्ञान है, उस बेसिक ज्ञान के बतौर अपने को ज्योतिबिंदु आत्मा मानकर प्रैक्टिस करते हुए ज्योतिबिंदु स्वरूप में पहले टिकता है। और जब उस रूप में टिकता है तो बाप का क्या डायरेक्शन है, अपन को आत्मा समझकर फिर बाप को याद करो। मैं आत्मा ज्योतिबिंदु, मेरा बाप भी ज्योतिबिंदु, तो तुम बच्चे जितना मुझे याद करते हो ओरिजिनल रूप में उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। तो जो बताया कि हम पवित्र हो जावेंगे, मना देह की कट, देह बहन की कट उतर जावेगी, तो फिर तुम सूक्ष्म बतनवासी हो जाओगे। क्या? कहां की वासी? सूक्ष्म बतनवासी का मतलब जैसे ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया दादा लेखराज ने, ऐसे हो जाएंगे? क्या मतलब? हाँ, कि आत्मा जो है इस दुनिया को, लौकिक दुनिया को, देह को, देह के संबंधों को, देह के पदार्थों को भूल जाएगी, बिंदु रूप में टिक जाएगी, अव्यक्त हो जाएगी। बिंदु रूप भी अव्यक्त स्टेज है या नहीं है? है कि सूक्ष्म शरीर ही अव्यक्त है? है, सूक्ष्म शरीर भी अव्यक्त है, लेकिन सूक्ष्म शरीर दो प्रकार का है। एक उनका है जो बहुत पाप करते हैं और आत्महत्या जैसा आपघात करते हैं, जीवघात करते हैं और दूसरों की भी हत्या कर देते हैं। ऐसे जघन्य पाप करने वाले सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। भले उन सूक्ष्म शरीर धारण करने वालों में भी कैटेगरीज अलग अलग हैं। कोई फरिश्ता, कोई जिन्नात, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई दुखदाई, कोई सुखदाई भी होते हैं। तो जो भूत प्रेत बनते हैं वो भी सूक्ष्म स्टेज है, सूक्ष्म शरीर है, लेकिन शरीर में रहते रहते जो देह को भूल जाए, अव्यक्त बिंदु रूप में स्टेज में टिक जाए, वो भी अव्यक्त स्टेज है। और ऊंची स्टेज है अव्यक्त स्टेज में जब तक नहीं टिकेंगे तब तक शरीर रहते मनन चिंतन मंथन की स्टेज नहीं आ सकती। जितना जितना निराकारी स्टेज में टिकेंगे, बीज रूप बनेंगे, तो विस्तार अपने आप हो जाएगा। विस्तार में जाना सहज है या सार में टिकना सहज है? है? विस्तार अपने आप होता है बीज का, और बीज रूप बनने में वृक्ष को बड़ा लंबा टाइम लग जाता है। तो सार में टिकने में, बिंदु रूप बनने में ज्यादा मेहनत है, क्योंकि वो अव्यक्त स्टेज है। अव्यक्तागत दुखम देव धीर वाप्यते, जो अव्यक्त बिंदु रूप स्टेज है वो देहधारियों के द्वारा बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है, परंतु दुनिया की जो सशक्त आत्माएं हैं, धर्म पिताएं जैसी लीडिंग आत्माएं, वो ही रास्ता चुनती हैं। बल कठिन है लेकिन शॉर्ट है या लंबा रास्ता है? है लंबा रास्ता है नहीं, हिम्मत है बच्चे मदद है बाप। जो ज्ञान में आने के बाद, पहचान होने के बाद, फाउंडेशन काल से ही उस बीज रूप स्टेज में टिकने के पुरुषार्थ ही बन जाते हैं प्रबल, उनको वो स्टेज जल्दी प्राप्त हो जाती है। तो बताया, तुम जब पवित्र बन जावेंगे तो सूक्ष्म वतनवासी बन जावेंगे। तुम माने कौन है? बाप के सन्मुख बैठकर पढ़ाई पढ़ने वाले, डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ने वाले। तो डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ने वालों में अव्वल नंबर कौन हुआ? प्रजापिता हुआ। जो प्रजापिता है अव्वल नंबर, वो डायरेक्ट पढ़ाई सूक्ष्म वतनवासी बनकर के पढ़ता है। मना मनन चिंतन मंथन की स्टेज में टिकता है। ये नियम है, जितना बिंदु को याद करेंगे, बिंदु रूप में स्टेज में टिकेंगे, सूक्ष्म रूप में टिकेंगे, उतना विस्तार स्वतः ही हो जाएगा। वो बिंदु रूप स्टेज विस्तार में ले आएगी। प्रैक्टिस करके देखें, खासकर अमृत वेले में। अमृत वेले की प्रैक्टिस कर ली तो सारा दिन मनन चिंतन मंथन चलता रहेगा। और उसका तरीका है, जितना सेवा करेंगे, सेवादारी बच्चों को कौन याद करता है? बाप याद करता है। जिनको बाप याद करेगा, स्मरण करेगा, उनकी स्मृति पावरफुल बनेगी या नहीं बनेगी? उनकी स्मृति भी पावरफुल बन जाती है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में पल पल सेवा में लगा रहना है। तन से सेवाधारी, मन के संकल्पों से ईश्वरीय सेवाधारी, और जो भी चटपुंजिया धन है उस धन के चप्पे चप्पे को कौन सी सेवा में लगाने वाला सेवाधारी है? ईश्वरीय सेवा में लगाने वाला। तो ऐसे सेवाधारी बच्चों को बाप याद करता है। बाप याद करेगा तो बिंदु रूप की स्टेज में टिक जाएंगे। बाप को याद करेंगे तो सुप्रीम टीचर की भी याद आ जाएगी। सुप्रीम टीचर क्या करता है? है क्या पढ़ाता है? है प्रोज और प्योरिटी पोएट्री का विस्तार बताता है। मना
गीता जो हमारी माता है, पोएट्री है, गीता गीत है, उसके एक एक शब्द का हिज्जे हिज्जे करके विस्तार बताता है। और जो अव्यक्तवाणी है वो हमारी प्रोज है, उसका भी विस्तार बताता है। तो बाप हमको बीज रूपी स्टेज में स्थिर करा के विस्तार में ले जाता है, मनन चिंतन मंथन के विस्तार में ले जाता है। तो कहां का वासी बना देता है? है सूक्ष्म बतनवासी बना देता है। पहले पहले कौन सी आत्मा सूक्ष्म बतनवासी बनती है? कौन सी आत्मा को गीता जो गीत है, पोएट्री है, उसके गहरे विस्तार का पता लग जाता है? मनुष्य सृष्टि के जो बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, वो सूक्ष्म बतनवासी बन जाता है। फिर क्या होता है? मनन चिंतन मंथन के विस्तार में जाते जाते अपने 84 जन्मों के विस्तार को पहचानेगा या नहीं पहचानेगा? पहचानेगा। अपनी जो दुनिया है, अपनी आत्मा के कनेक्शन में आने वाली दुनिया 84 जन्मों में अनेक आत्माएं संबंध में आती है, संपर्क में आती है, संसर्ग में आती है। उनके साथ मैंने क्या क्या पार्ट बजाया है, कौन से स्थान विशेष पर पार्ट बजाया है, कैसा कैसा पार्ट बजाया, सारा विस्तार रूपी मनन चिंतन मंथन बुद्धि में आता रहता है। जब ऐसा विस्तार पक्का हो जाता है फिर क्या होता है? अरे वृक्ष का पूरा विस्तार हो जाएगा फिर क्या होता है? फिर बीज आता है, फूल आता है, फल बनता है, उसमें बीज आता है, फल पक जाता है और बीज अपने को फल से डिटैच कर देता है। तो वृक्ष का कोई फल तो होगा जिसके अंदर का बीज अपने को वृक्ष से पहले डिटैच करता है। ये है मनुष्य सृष्टि का झाड़। इसमें भी कोई बीज है अव्वल नंबर का जो सारे वृक्ष से अपने को डिटैच कर देता है। नो अटैचमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि सन्यासी बन जाता है। कर्म इंद्रियों के कर्म छोड़ देता है। कर्म इंद्रियों से देह का संन्यास करना है या मन बुद्धि से संन्यास धारण करना है? मन बुद्धि से डिटैच होना है। तो बताया कि सूक्ष्म वतनवासी से फिर मूल वतनवासी हो जाएंगे। क्या? जब अपने षष्ठी रूपी वृक्ष को संपूर्ण जान जावेंगे, हर आत्मा का अपना अपना वृक्ष होगा या नहीं होगा, है? तो जब जान जावेंगे फिर क्या रिजल्ट होगा? सारा विस्तार जब हो गया तो वृक्ष में से वो बीज अपने को डिटैच कर देता है। कहां का वासी हो जाता है?
इस दुनिया से डिटैच होगा तो मन बुद्धि कहाँ रखी रहेगी, है ना? मूल वतन में रखी रहेगी। मूल वतन राशि हो जाएंगे। ये बात समझना बिल्कुल सहज है और ये बात समझना इनके ऊपर तो और ही सहज है। किनके ऊपर है? इनके ऊपर। इनके माने है लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा के लिए तो और ही सहज है। और चलो देखो सतयुग, देखो त्रेता द्वापर कलयुग, अभी कलयुग है, सब मरने वाले हैं, कलयुग का अंत है, बाकी ये बचने हैं। इशारा किया कौन है? ये बचने हैं माना दो बचेंगे या एक बचेगा? हा? दो बचेंगे। दो माने कौन है? लक्ष्मी नारायण। दो आत्माएं बचेंगी, लक्ष्मी बचेगी और नारायण बचेगा, है? दो बचेंगे। अरे लड़ाई सामने खड़ी है, अभी कुछ भी करना है तो अभी करना है। कुछ भी माने हा? अरे जो भी तीव्र पुरुषार्थ करना है, तन के द्वारा, धन के द्वारा, मन के संकल्पों के द्वारा, वो तीव्र पुरुषार्थ अभी करना है और है बहुत सहज। बाबा बड़ा सहज समझाते हैं। मैं जानता हूं क्या जानता हूं कि बाबा बड़ा सहज समझाते हैं। मैं जानता हूं कि सब भूल जाते हैं। क्या ये सहज समझाने भी सब भूल जाते हैं? पता नहीं क्या क्या बताते हैं। जो कोई की भी बुद्धि में बैठता ही नहीं और उसको ये भी कह देना है ये तुम समझते हो, कि बाप से हम वर्षा ले रहे हैं और बाबा कहते हैं मुझे याद करते रहो तो तुम्हारा विकर्म भस्म हो जाएगा। वी माने विपरीत, कर्म माने कर्म। जो भी गीता ज्ञान के विपरीत तुमने कर्म किए हैं वो सब कर्म भस्म हो जाए, क्योंकि गीता ज्ञान में ही भगवान ने कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई है। और तो कोई शास्त्र दुनिया का है ही नहीं जिसमें ये बातें समझाई गई हो। तो अभी
ये बातें अच्छी तरह से समझते हो। पीछे क्या? अभी नहीं समझेंगे तो पीछे क्या होगा? क्या विचार है? बरसा लेंगे? हाँ, बरसा लेंगे। पक्के ब्रह्मा कुमार बनेंगे? हाँ, पक्के ब्रह्मा कुमार माने अब्बल नंबर ब्रह्मा के कुमार बनेंगे या नंबर वार ब्रह्मा के कुमार बनेंगे? हैं, परम ब्रह्म के कुमार बनेंगे? हैं, भक्ति मार्ग में तो गाते रहते हैं। हैं, क्या गाते हैं? अरे ब्रह्मा को भी नमन नहीं करना है, विष्णु को भी नमन नहीं करना है, शंकर को भी नमन नहीं करना है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो परम ब्रह्म है साक्षात प्रैक्टिकल में आंखों के सामने को साक्षात कहा जाता है, उसको नमन करना है। तो ऐसे पक्के ब्रह्मा कुमार बनेंगे कि एक से ही सुनेंगे और कोई से नहीं सुनेंगे। अरे एक को पहचानेंगे तब सुनेंगे कि बिना पहचाने सुनेंगे? पहले तो क्या करना पड़े? एक को पहचानना पड़े। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे नहीं तो ऐसे अब्बल नंबर पुरी के ब्राह्मण नहीं बनने से फिर तुम अब्बल नंबर के देवता कैसे बनेंगे सूर्यवंशी? सूर्यवंशी देवता कहाँ कहाँ बनेंगे? है त्रेता में? त्रेता भी तो स्वर्ग है। है संगम में ही सूर्यवंशी बनते हैं। जो राधा कृष्ण पहला पत्ता बनेंगे वो सूर्यवंशी नहीं होंगे? है, होंगे ना, वो चंद्रवंशी होंगे। ज्ञान सूरी के बच्चे नहीं बनेंगे? हैं? पहला पत्ता सृष्टि का। अरे जो ज्ञान सूरी है अभी ज्ञान दे रहा है, सुप्रीम टीचर के रूप में भले ज्ञान दे रहा है, तो पढ़ाई पढ़ाते समय उसकी मुख्य नजर किसके ऊपर है? सारी पढ़ाई किसके लिए चल रही है? है कृष्ण बच्चे के लिए। तो वो ही सूर्यवंशी नहीं बनेगा? तो बताया ये कितना सहज समझाते हैं सेकंड में। गाया हुआ है कि सेकंड में जीवन मुक्ति, यानी एक सेकंड में समझा करके एक सेकंड में जनक ने क्या पाई? जीवन मुक्ति पाई। तो जीवन मुक्ति पाएंगे तो नई राजधानी में पाएंगे या पुरानी दुनिया में पाएंगे? है नई राजधानी का संगठन होगा या नहीं होगा? उस ब्राह्मण सो देवता बनने वालों के संगठन में कोई भिखारी पांव रख सकेगा? नहीं रख सकेगा। संग दोष अन्न दोष में आने वाला पांव रख सकेगा? रखेगा? नहीं रख सकेगा। विनाश भी साथ साथ होता है और स्थापना के साथ विनाश तो होता ही है, लेकिन राजधानी भी तैयार होती है। बाप तो कहते हैं मैं जब आता हूं तो एक सेकंड में 10 से राजधानी स्थापन कर देता हूं। ऐसे नहीं, जो वर्तमान विजयमाला रुद्रमाला के पुरुषार्थी हैं लगातार नाक रगड़ते रहते हैं राजधानी स्थापन संगठन है यूनिटी यूनिटी बनती ही नहीं। तो मेरे आने की निशानी क्या है? तब कहें मैं आ गया, माँ के पेट में जब बीज पड़ता है तब बच्चा आ गया, वो बीज भ्रूण बनता है तब आ गया, वो भ्रूण बड़ा होकर के बच्चा बन करके पैदा होता है तब कहा जाता है बच्चा आया, या पहले ही कहा जाता है बच्चा पैदा हो गया? हैं? निशानी बताइए, बच्चा पैदा होता है तो जो कान से घर में आवाज सुनेगा बाप सुनेगा पहले, वो भी कहेगा। पड़ोसी आवाज सुनेगा वाह 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 तो वो भी कहेगा बच्चा आया। जो भी इन आंखों से देखेगा तो क्या कहेगा? बच्चा आया। ऐसे यहां भी बताया कि बाप का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है तो ये निशानी है, जो इन आंखों से देखे वो क्या कहे, दिल से कहे मेरा बाप आ गया। सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नहीं, जो अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं उनका नहीं, मेरा बाप आ गया। तो ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे जो तहे दिल से एवरलास्टिंग कहें, फर्स्ट और आखिरी बार कहें कि मेरा बाप आ गया। नहीं तो ऐसा ब्राह्मण नहीं बनने से फिर तुम देवता कैसे बनेंगे? कितना सहज से किंड में समझाते हैं, एक सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है जनक की। ओम शांति। एक्यूरेट में किसका चित्र दिखाएंगे? एक्यूरेट छपाएंगे तो उस एक्यूरेट चित्र में पहले पहले चित्र का परिचय देंगे। ऊपर जो बाप का चित्र देंगे लिंग का, साकार बाप का परिचय देंगे, उसको नाका कान वाला दिखाएंगे तब हो गया। तुमने बहुत अच्छा समझा, तुमने आज की मुरली को पूरा हप कर लिया।